Yeah, there are some people. Nevin from America. He's come here. He's Sweetan's brother. Let's welcome him.
Nevin America se aaya hai. Sweetan ke bhai aaye unka swagat kare.
Yeah, welcome.
Aur Rodney ke bhi bhai.
Thank you for joining us this morning.
Dhanyawad yahan aane ke liye is subah.
Yeah, let's turn to John chapter 2.
आइए हम यूहन्ना के दूसरे अध्याय को देखें।
Yeah, it's going to be a short word.
छोटा ही वचन है ये।
John chapter 2 verses 12 to 22.
यूहन्ना का दूसरा अध्याय वचन 12 से 22।
Yeah, I'm going to read in English quickly and then Deepana will read.
Michael अंग्रेजी में पढ़ेंगे जल्दी से और फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगी।
Yeah, it says verse 12. After this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There, they stayed for few days. Jesus clears the temple courts. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep and doves, and other sitting at the table exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. Stop turning my father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do this all?" Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple and you are going to raise it in 3 days." But the temple he had spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken.
यूहन्ना का दूसरा अध्याय वचन 12 से। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठा हुआ पाया। तब उसने रस्सियों का कोढ़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों को कहा, "इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ." तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, "तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी." इस पर यहूदियों ने उसे कहा, "तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है?" यीशु ने उनको उत्तर दिया, "इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा." यहूदियों ने कहा, "इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा?" परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उन वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतिथि ली।
आमेन।
आमेन।
Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करते
हैं। Father, we thank you for your word.
पिता आपके वचन के लिए धन्यवाद।
Thank you, Lord.
धन्यवाद प्रभु।
And now we pray.
और अब हम प्रार्थना करते हैं।
That as we look at it.
कि जैसे हम इसकी ओर देखते हैं।
You will speak to us.
आप हमसे बातें करेंगे।
Open our minds.
हमारे मन को खोलो प्रभु।
Help us to hear your voice.
हमें मदद करो आपकी आवाज सुनने के लिए।
Spirit of God, stir us up.
परमेश्वर की आत्मा हम पर आ जाओ।
We ask in Jesus' name.
हम मांगते हैं यीशु के नाम में।
I've been reading from book of John in these days.
इन दिनों मैं यूहन्ना की किताब से पढ़ रहा हूँ।
And it's a very interesting book.
और ये बहुत ही दिलचस्प किताब है।
It's slightly different than the other three gospels.
और ये दूसरे जो तीन सुसमाचार है उससे अलग है।
Yeah, it's primarily because John has written it, and John was the closest disciple among all the 12 disciples.
क्योंकि ये किताब यहोन्ना ने लिखी है और 12 शिष्यों में से यहोन्ना यीशु के सबसे करीबी थे.
And John starts this book by saying, speaking about Jesus himself.
और यहोन्ना ये किताब की शुरुआत में ही यीशु के बारे में बता रहे हैं.
Just as it is mentioned in the Genesis, John also starts like that. In the beginning, he says, Jesus is the Word of God. It was with God, and it became flesh and lived among us. In verse 14 of chapter 1. और वहाँ पर वो शुरुआत में लिखता
है, उत्पत्ति की किताब की तरह ही आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था.
And John was so close to Jesus that when Jesus was crucified on the cross.
और यहोन्ना यीशु के इतने करीब थे कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया.
He was the only one who was remaining there. Rest of all the disciples ran away.
वो एक अकेला था जो वहाँ पर रुका था. बाकी के सभी चेले भाग गए थे.
And Jesus, while dying, he handed over his mother's care to John.
और यीशु जब मर रहे थे तो अपनी माँ की देखभाल उसने यहोन्ना को सौंपी थी.
So John was really loved by Jesus.
तो यहोन्ना यीशु के द्वारा बहुत ही प्रेम किए गए थे.
And he was very close to him.
और वो यीशु के बहुत ही करीब.
So this book is really it tells so many things about to us about Jesus.
तो ये किताब कई सारी बातें हमें बताती है यीशु के बारे में.
I always recommend those who come to Christ and those who are newly born again. I recommend them to read this book.
और जो यीशु में नए आते हैं, मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि पहले आप यूहन्ना की किताब पढ़ो.
John wrote this all these 21 chapters or the book of John in two parts primarily.
और यूहन्ना ने ये सारे जो 21 अध्याय हैं, उन्हें दो भागों में लिखा है.
In the first part, he has described about Jesus's public ministry and his healing and all those things.
और पहले भाग में उन्हें यीशु जो लोगों के बीच प्रचार करते थे, जो उनकी सेविकाएं थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा
and
है.
And in the second part, he is talking about Jesus, his catching by the people and his crucifixion and his death on the cross.
और दूसरे भाग में वो जो यीशु पकड़े जाते हैं लोगों के द्वारा और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है और उनकी मृत्यु, उसके बारे में लिखा है.
And through all these chapters, John also mentions about Jesus, that he tells these books that Jesus is the Lamb of God.
और इन्हीं अध्यायों में यहोन्ना कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का मेमना था.
He is the Son of God. He is the Son of Man.
और वो परमेश्वर का पुत्र था.
Messiah.
मसीहा.
King of Israel and Jesus of Nazareth.
इज़राइल का राजा और नाज़रेत का यीशु.
In John 20 verse 31, John tells us.
और यहोन्ना के 20 वचन 31 में यीशु कहता है.
The reason that he writes this gospel is these are written.
और जो वजह है कि उन्होंने ये सुसमाचार लिखा, क्योंकि ये है.
These are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Hallelujah.
परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का मसीह, परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ. आमेन.
And as you read these books of John, you will realize that the glory of God is revealed.
और जैसे आप ये यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है.
So two things I would want to share from this passage.
तो इस अध्याय से मैं दो बातें बांटना चाहता हूँ.
So if you want to write the topic is true sacrifice and true temple.
अगर आप इसका शीर्षक लिखना चाहते हैं तो इसका शीर्षक होगा सच्ची बलिदान और सच्चा मंदिर.
Now as we read in this story, in this thing that was happening.
और जैसे हमने इस कहानी में पढ़ा कि जो बातें हो रही थी.
In those days, temple was meant for bringing your sacrifices to God.
और उन दिनों मंदिर होते थे ताकि आप आपका बलिदान परमेश्वर के लिए लेकर आए.
And you would come once in a year, and and offer the sacrifices.
और आप साल में एक बार आकर अपने बलिदान को परमेश्वर को अर्पित करते.
And the temple means God's presence would be there.
और मंदिर का अर्थ ये है कि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती थी.
You would meet with God. It was His holy place.
और परमेश्वर से आप मुलाकात करते थे. वो परमेश्वर का पवित्र घराना था.
And you are wherever you are from, but you would want to go to the temple.
और हमेशा आप चाहते कि आप मंदिर में जाए.
You would look forward to go to this place.
आप वहाँ जाना चाहते थे.
And this temple is in Jerusalem.
और ये मंदिर यरूशलेम में है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं.
And it is where you would find God, meet with God, and God would provide your needs.
और वहाँ पर आप परमेश्वर से मिलते और प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करता.
As we read this passage, we see here some disturbances happening as Jesus comes to the temple.
और जैसे हम ये अध्याय पढ़ते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर कुछ बातें हो रही है, कुछ गड़बड़ी है, जैसे यीशु मंदिर में आते हैं.
Yeah, it appears that this purpose was lost. The purpose of sacrifice looks like it was lost over the period of time.
और ऐसा लग रहा था जो बलिदान का अर्थ है वो खो गया था उस समय में.
What God had started a spiritual transformation had now become a physical or a ritualistic thing.
और परमेश्वर ने जो बात की शुरुआत की थी अब वो एक प्रथा के रूप में हो रही थी.
Yeah, it had just become a kind of a law.
और बस जैसे एक नियम है वैसे हो गई थी बात.
You were not involved with your heart.
आप हृदय से शामिल नहीं थे कार्य में.
People would do just because they had to do.
बस लोग कर रहे थे क्योंकि हमें करना है इसलिए.
Just for the sake of doing, they would do these sacrifices, offer sacrifices.
करना है इसलिए वो जाकर वो बलिदान चढ़ा रहे थे.
Why I say that we will understand as we go ahead.
और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं आगे आपको बताऊंगा.
The same temple where people would bring a sin offering.
और वही मंदिर जहाँ पर लोग पाप का बलिदान लेकर आते थे.
Year after year.
हर साल.
It had become a place of ritual.
और बस अब वो एक प्रथा का स्थान बन गया था.
Jesus says, Stop turning my father's house into market.
और यीशु कहता है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ.
Yeah, why did temple become a marketplace?
और अब यहाँ पर मंदिर एक व्यापार का घर क्यों बन गया?
So when anybody would bring the sacrificial offering, they had to bring an offering which was without any blemish. They would bring.
जब कोई अपना बलिदान लेकर आता था तब उसे ऐसा बलिदान चढ़ाना होता जो बिना कोई दोष के था.
And as you know, when you bring sacrifice, it was for a sin offering.
और आप जानते हैं कि जब आप बलिदान लेकर आते तो वो एक पाप हुआ उसके कारण आप वो बलिदान लेकर आते.
So you would seek God's forgiveness.
तो आप परमेश्वर से क्षमा चाहते थे.
And it was a spiritual act.
और ये एक आत्मिक कार्य था.
People had to do it with understanding that God is forgiving their sin.
और लोगों को ये समझ से ये करना होता कि परमेश्वर उनके पाप को क्षमा करे.
And in those days they had to bring bull or sheep or doves.
और उन दिनों में लोगों को भेंट के रूप में भेड़ों और बैलों को लेकर आना पड़ता.
And for forgiveness of their sins, the blood of those animals was put there in the temple.
और उनके पाप क्षमा हो जाए इसलिए इन जानवरों का रक्त वहाँ पर मंदिर पर चढ़ाया जाता था.
Not only that they can bring any animal, but they had to bring an animal or a dove which is completely good, which doesn't have any blemish, which doesn't have any sickness in it.
और ऐसा ही नहीं, उन्हें ऐसा जानवर या कबूतर चढ़ाना पड़ता जिसमें कोई दोष ना हो, उसका अर्थ कोई बीमारी ना हो या उसमें कोई खराबी ना हो.
एंड व्हेन पीपल वुड कम फ्रॉम फार ऑफ.
और जब लोग दूर से आते
अलोंग विद देयर सैक्रिफाइसेस,
अपने चढ़ावे को लेकर,
एनिमल्स,
जानवरों को लेकर,
They had to come from far off places. Some of them would just come from Galilee, which was close to Jerusalem.
और कुछ लोग हैं जो दूर से आते, तो कुछ लोग गलील से आते थे, जो वहाँ से नजदीक ही था.
But some would come from places like Egypt and Rome.
लेकिन कुछ लोग मिस्र देश से या रोम से आते.
And it was really difficult to get an animal in the perfect conditions right up to the place of offering.
और बहुत मुश्किल होता ऐसे जानवर को या कबूतर को ढूंढना जिसमें कोई दोष ना हो, खराबी ना हो, कोई बीमारी ना हो।
Because they were coming from far off places, they would probably find difficult to bring sacrifices.
और क्योंकि वो दूर से आ रहे थे, ऐसे बलिदान को ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो रहा था।
We are looking at this temple becoming a marketplace.
और हम देख रहे हैं ये मंदिर एक व्यापार का घराना बन रहा था।
We cannot find how and when sale of sacrificial animals started happening or money changing started in the temple.
और हमें नहीं पता कि कब ये बेचना या ये पैसे की बातें वहाँ पर मंदिर में होने लग गई थी।
John or the other gospel books also do not clearly say when it happened.
और यूहन्ना या दूसरे सुसमाचार की किताबों में भी नहीं बताया गया कि ये व्यापार कब होने लगा।
As people started doing year after year, somewhere down the line, it started changing.
और लोग दर साल साल ये कर रहे थे और बातें तब बदलने लगी।
Probably religious leaders found or the people found that it would be good if these animals are available here near the temple.
तो शायद जो धार्मिक अगवे हैं ये सोचते होंगे कि यदि ये जानवर मंदिर के आसपास ही होगा तो खरीदारी या बेचने में आसानी होगी।
So the Jews there, the leaders there, they found it convenient to allow the selling and selling of the sacrificial animals.
तो जो यहूदी थे, जो अगवे थे, वो उन्हें वहाँ पर आरामदायक लगता था यदि वहाँ पर ही जानवर होते खरीदने और बेचने के लिए।
So instead of bringing all the way from where you stay, you might as well come and buy.
तो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से जानवर को लेकर आना उससे अच्छा कि मंदिर में ही जानवर को खरीदा जाए।
So there was necessity of even money changers or people who would exchange the money and give in the currency of Jerusalem.
तो शायद जो ये पैसे ले रहे थे उनके लिए भी आसानी होती।
So it appear it finally happens that no longer anyone needed to carry one's own best sheep or oxen or any first fruits that they would want to bring.
तो अब जरूरत नहीं हुई कि कोई जो पहला ऐसा जानवर हो या भेड़ हो उसे या बैल हो उसे खरीद कर लेकर आना पड़े दूर से।
Money changers could now make money by exchanging the money on the spot.
और पैसे का जो लेन देन करते थे उनके लिए अब आसान हो गई क्योंकि पैसे अब जगह पर ही मिलने लगे।
And this was for the convenience of the people as well, and the business also started happening in the temple.
और ये लोगों के लिए भी वहाँ पर आसानी हो रही थी और इसके वजह से वहाँ पर मंदिर में ही व्यापार होने लगा।
And it looks like everyone found this thing a very convenient thing.
और ऐसा लग रहा है कि हर किसी को ये बात से आसानी हो रही थी वहाँ पर।
Both people wanted to offer sacrifices, and religious leaders liked this convenience.
और लोग बलिदान को चढ़ाना चाहते थे और धार्मिक अगुओं को ये बात पसंद आ रही थी।
But people forgot the whole purpose of doing it.
लेकिन लोग जो पूरी वजह है ये करने की उसे भूल गए।
Yeah, the market was so big. There were hundreds of bulls, hundreds of oxen and sheep and doves.
और वो बाजार इतना बड़ा था, वहाँ पर हजारों ऐसे बैल, भेड़, कबूतर थे।
And it really became a marketplace.
और सच में ये एक बाजार की जगह हो गई।
And the temple was losing its original purpose.
और वो जो मंदिर उसकी जो सही वजह थी वो खो रहा था।
Because of this, more people could say, "I am so religious. I am going there. I am offering my sacrifice. It's so easily available there."
और इसलिए लोग कह रहे थे, "मैं इतना धार्मिक हूँ, मैं मेरा बलिदान चढ़ा रहा हूँ."
And this arrangement. Looked like people felt, I am so faithful, I can come here and just offer, and it became so comfortable for people.
और ये सुविधा के कारण लोगों को लगा कि मैं इतना विश्वास योग्य हूँ, मैं इतने अच्छे से अपने बलिदान को चढ़ा रहा हूँ।
Jesus was not against the temple.
और यीशु मंदिर के विरोध में नहीं था।
But he was against the exploitation that was being done in the temple.
लेकिन वहाँ मंदिर में जो बुराई, जो खराबी हो रही थी, वो उसके विरोध में था।
Probably Jews there were making money.
शायद जो यहूदी थे वहाँ पर वो पैसे कमा रहे थे।
In the name of offering sacrifices.
बलिदान के नाम में।
In the name of giving people easy place to buy.
और लोगों को एक आसान या आरामदायक जगह जहाँ से वो खरीदे उसके नाम पे।
They could make money.
वो पैसे कमा सकते थे।
They could even say like this that part of this money is going to temple, so we are doing a good thing.
और वो ये भी कह सकते थे इस पैसे का कुछ भाग तो मंदिर के लिए ही जा रहा है, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं.
But the original purpose was lost.
लेकिन जो मुख्य वजह थी मंदिर की वो खो रही थी.
And Jesus was not happy with this system.
और यीशु इस तरीकों से खुश नहीं था.
Jesus acknowledges that this temple is his father's house and he wants it to be treated well with honor.
और यीशु ये समझ गया कि ये घर मेरे पिता का घर है और उसे आदर के साथ संभाला जाए.
Because it is the house of his father.
क्योंकि ये उसका पिता का घराना था.
It is the house of Lord.
ये परमेश्वर का घराना था.
So what does Jesus do?
तो यीशु क्या कहता करता है?
He finds some ropes.
वो कुछ रस्सियों को ढूंढ लेता है.
He makes a whip out of it.
और उसको
चाबुक बना लेता.
उसका एक चाबुक बनाता है.
And he becomes so bold and he becomes so angry and he starts driving out people, driving out oxen, driving out sheep and everybody who was doing this, he starts driving them out.
और वो धाड़सिया हो जाता है और गुस्सामंद हो जाता है और हर कोई जो वहाँ पर था, भेड़, बकरी और लोग, सबको वो बाहर निकालने लगता है.
The place that had become market, he starts cleaning it.
और ये जगह जो अब व्यापार का घर बन गई थी, उसे वो अब साफ करने लगता है.
He became angry knowing that his father's house, in my father's house, he probably said, "How dare you make this as a bazaar or a market?"
और वो गुस्सामंद हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे पिता के घर को एक व्यापार का घर कैसे बना दिया?
Here God is worshipped.
यहाँ पर परमेश्वर की आराधना
God
होती
is honored.
है. परमेश्वर को आदर दिया
Sins
जाता
are forgiven.
है. पाप क्षमा होते हैं.
God's presence is here.
परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है.
Jesus loved the Father so dearly that he would do anything.
और यीशु अपने पिता से इतना प्रेम करता था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार था.
He would do anything to please his father.
और वो अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकता था.
So he goes and drives out everybody who was involved in this.
तो वो वहाँ जाता है और हर कोई जो ये कार्य में मौजूद था उसे वो बाहर निकालने लगता.
He drives out even the animals.
और वो जानवरों को भी बाहर निकालता है.
Probably people had forgotten.
शायद लोग भूल गए थे.
That God was more interested in their hearts.
कि परमेश्वर उनके हृदय में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है.
Not just the sacrifices, but God was more interested in their hearts' condition.
सिर्फ बलिदान में नहीं, लेकिन उनके जो हृदय की स्थिति थी, उसमें वो ज़्यादा दिलचस्पी रखता था.
As time passed by, it just became a ritual.
और जैसे समय बीता, ये प्रथा के समान हो गया.
David wonderfully says in Psalm 51, verse 16 and 17.
खूबसूरती से कहता है भजन 51 में
16 and 17
वचन 16 और 17.
You do not delight in sacrifice or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offering. Verse 17 says, My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart. You, God, will not despise.
भजन 51 वचन 16. क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता. वचन 17. टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है.
हे
परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता.
God wants your heart more than sacrifices.
परमेश्वर बलिदान से ज्यादा आपके हृदय को चाहता है.
A heart that is broken, a heart that is repentant.
ऐसा हृदय जो पश्चाताप करता है और जो टूटा हुआ है.
A heart that is full of worship towards God.
और ऐसा हृदय जो परमेश्वर के लिए आराधना से भरा हुआ हो.
Yeah, our God doesn't want rituals.
हमारा परमेश्वर प्रथा नहीं चाहता.
He doesn't want things to be done just without doing having any meaning.
और वो नहीं चाहता कि हम बस काम करें और उसका अर्थ न समझे.
जस्ट बिकॉज यू हैव टू डू, यू जस्ट डू इट. आवर गॉड डजंट लाइक इट.
बस आप कर रहे हैं क्योंकि आपको करना है, इसलिए परमेश्वर ये बात को पसंद नहीं करता है.
या ही वांट्स अस टू कम टू हिम, सीक हिम, ऑनर हिम.
वो चाहता है कि हम उसकी ओर आए, उसकी खोज करें और उसका आदर करें।
To praise him, to glorify him with all of our heart.
उसकी स्तुति करें और हर एक कार्य में पूरे हृदय से उसकी महिमा करें।
With all of our heart, mind and soul and body.
अपने पूरे मन से, हृदय से, प्राण से और शरीर से।
Not just ritualistic sacrifices.
बस प्रथा के रूप में बलिदान हम ना करते रहे।
People that time had lost these principles.
और लोगों ने उस समय यह सिद्धांत को खो दिया था।
That God was looking at their heart, He was interested in their hearts.
कि परमेश्वर उनकी हृदय के और देख रहा है और उसके उनके हृदय में दिलचस्पी रखता है।
And not just that, what you can bring, but what you can do with your understanding.
बस इतना ही नहीं कि आप क्या लेकर आते हैं, लेकिन आप कौन सी समझ से कर रहे हैं, उसे महत्वपूर्ण है।
We hear Paul writes in Romans 12 verse 1.
और हम देखते हैं कि पावलुस रोमियो की किताब वचन 1 में लिखता है।
Therefore, I urge you, brothers, to offer your bodies as a living sacrifices.
और इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ।
Holy and pleasing to God.
यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है।
This is your spiritual act of worship.
और यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है।
So how do you come to worship? How do you come when you come to meet with God?
तो आप कैसे आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए?
How do you offer things to God?
आप परमेश्वर को कैसी भेंट चढ़ाते हैं?
Is your heart involved when you do business with God?
क्या आपका हृदय उसमें शामिल है जब आप परमेश्वर से व्यापार करते हैं?
So what happened was this because of this religious convenience or rituals.
और ऐसा हुआ कि इन प्रथाओं के कारण या उपलब्धियों के कारण
people would come to the temple, sorry, they would come to the market.
और लोग मंदिर आते थे, माफ करना, वो बाजार में आते थे।
Buy things and offer without much of repentance or a matter of heart.
बस चीजों को खरीदते थे और चढ़ाते थे, लेकिन उनका हृदय इसमें शामिल नहीं था, वो पश्चाताप नहीं करते थे।
And Jesus understood this.
और यीशु ये बात को समझ गया।
And he saw what was happening here.
और उन्होंने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है।
And he became angry.
और वो गुस्सामंद हो गया।
Because the Jews were making it a place of business.
क्योंकि यहूदी उसे एक व्यापार का स्थान बना रहे थे।
As it is mentioned in the other three gospels.
और जैसा लिखा है दूसरे तीन सुसमाचारों में।
Yeah, in Matthew 21, Mark 11 and Luke 19.
मत्ती में, मरकुस में और लूका की किताब में।
It says Jesus entered the temple, overturned tables, and quoted Isaiah 56 verse 7.
और वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया, वहाँ के मेज को उल्टा कर दिया और फिर यशाया की का एक अध्याय कहा।
Isaiah 56 verse 7.
और यशाया 56 वचन 7.
My house shall be called a house of prayer.
और मेरा घर एक प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा।
And Jeremiah 7 verse 11 says.
और यिर्मयाहा की किताब अध्याय 7 वचन 11 में लिखा है।
You have made this house a den of robbers.
और तूने इसे एक चोर का घर बना दिया है, चोर की गुफा बना दी है।
Because Jesus could not take this.
क्योंकि यीशु इन बातों को सह नहीं पा रहा था।
Jews were there making the temple in this way.
और यहूदियों ने मंदिर का ये हाल बना दिया था,
making it a marketplace,
उसे व्यापार की जगह बना दी थी।
Jewish leaders decided to, and because Jesus would go and straight away tell,
और क्योंकि यीशु जाकर सीधा सीधा कह देते थे,
Jewish leaders decided to silence Jesus.
तो यहूदी अगुओं ने ये निर्णय लिया कि यीशु को वो चुप कर देंगे।
Indeed, to destroy him.
और वो उनका विनाश कर देना चाहते थे।
It's mentioned in Mark 11 and Luke 19.
और ये मरकुस 11 और लूका 19 में लिखा हुआ है।
But Jesus was not deterred with what they thought.
लेकिन जो यीशु जो उन्होंने सोचा उससे यीशु घबराया नहीं।
He said,
उसने कहा,
Zeal for your house will consume me.
कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी।
When I was going through this passage, this is the verse that captivated my heart.
और जब ये अध्याय में पढ़ रहा था, इस वचन ने मेरे हृदय को पकड़ लिया.
Zeal for your house will consume me.
तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी.
If we are serving the Lord, if we are loving the God, if we are wanting to please God, this should be our heart as well.
अगर हम परमेश्वर की सेविकाएं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये वचन हम में होना चाहिए.
Zeal for your house will consume me.
तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी.
Let me tell you, Jesus was so passionate about the Father's work.
और मैं आपको बताऊं, यीशु पिता के कार्य के लिए इतनी चाहत रखता था.
That eventually he suffered.
कि ऐसा हुआ कि उसने पीड़ा भी सही.
He suffered by the same Jews, hands of these Jews.
और इन यहूदियों के द्वारा ही उसे पीड़ा पहुंचाई गई.
He was nailed to the cross. He died.
उसे क्रूस पर चढ़ाया गया. वो मर गया.
The disciples then, when it happened, remembered.
और जब ये हुआ तब शिष्यों को याद आया.
The prophecy that is mentioned in Psalm 69 verse 9.
और वो भविष्यवाणी जो भजन की किताब में लिखी है.
Which was fulfilled by Jesus's death.
जो यीशु की मृत्यु के द्वारा पूरी हुई.
Yeah, it's mentioned in Psalm 69 verse 9 also.
और वो भजन की किताब में लिखा है.
Zeal for your house will consume me.
के तेरे भवन की जलते जलते भस्म हुआ और तू निंद.
हाँ बस, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ. Jesus gave himself.
यीशु ने अपने आप को दे दिया.
He wants to honor Father's business.
वो पिता के व्यवसाय का आदर करना चाहता है.
Let's look at the another thing that we would want to see.
और एक बात है जो हम देखना चाहते हैं.
The second reason I believe Jesus cleansed the temple was this.
और दूसरी वजह जिसके कारण यीशु ने मंदिर का सफाया किया वो ये है.
He wanted people to know. He wanted all the Jews to know who is the true temple.
और वो चाहता था कि लोग यहूदी जो थे वो जान जाए कि सच्चा मंदिर क्या है.
After Jesus drives animal out, overturns the tables, he commands the money changers to depart from that place.
और जब यीशु वहाँ से जानवरों को बाहर निकालता है, मेज उल्टा कर देता है, और जो पैसे लेते देना लेना देना करते थे उनको बाहर निकालता है.
And commands them to take away all those things.
और वो कहता है सारी चीजों को यहाँ से बाहर निकालो.
You think people kept quiet?
तुम्हें लगता है लोग चुप रहे होंगे?
The Jews who were thinking this is such a nice system, it is so easy, we are also making money.
और जो यहूदी जो सोच रहे थे सब कुछ इतना आसान हो गया और हम पैसे भी कमा रहे हैं.
They retaliated with Jesus.
उन्होंने यीशु का विरोध किया.
And they demanded a sign. Jesus shows the sign. By what authority you are doing this?
और उन्होंने कहा हमें एक चिन्ह दिखाओ कि किस अधिकार से तुम ये कर रहे हो.
Jesus answers them.
और यीशु ये उत्तर देता है.
Destroy this temple and in 3 days I will raise it up.
इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा.
Now if you or I were there, we would also have said the same thing as these Jews are saying now.
और अगर तब आप और मैं होते तो हम भी इन यहूदियों की तरह ही बातें करते.
Yeah, because John tells us.
क्योंकि यूहन्ना हमें कहता है.
That it has taken 46 years to build this temple.
के इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं.
And Jews are asking Jesus, and you will raise it up in 3 days.
और यहूदी यीशु से प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम इसे 3 दिन में खड़ा कर दोगे?
Can you imagine the Jews resisting to what Jesus was saying?
क्या आप सोचते थे सकते हैं कि यहूदी इसका विरोध कर रहे थे जो यीशु कह रहा है?
Because it just looked impossible.
क्योंकि उनकी नजर में ये नामुमकिन था.
Probably they are saying Jesus has gone mad or Jesus is crazy.
शायद वो ये सोच रहे कि यीशु मूर्ख हो गया है, वो पागल है.
Yeah, they are saying Jesus, you are crazy.
वो कह रहे यीशु तू पागल है.
Why? 3 reasons.
क्यों? 3 वजह.
No temple which took 46 years to build can be built in only 3 days. Yeah, you agree?
पहली वजह ये कि 46 वर्ष जिस मंदिर को बनाने में लगे वो 3 दिन में कैसे खड़ा होगा? क्या आप ही सहमत है इस बात से?
सपोज यू स्टिल ट्राई टू डू इट, यू कांट. सेकंड थिंग इज यू कांट डू इट अलोन.
और अगर सोचो यदि आप कोशिश भी करें तो आप वो अकेले नहीं कर सकते हैं.
एंड थर्ड थिंग दे फाउंड अनदर रीजन टू रेजिस्ट, थिंग्स आर जस्ट फाइन.
और तीसरी बात जिसके लिए वो यीशु का विरोध कर रहे थे, वो सोच रहे थे सब कुछ तो ठीक है।
Why should we change this system? There is no reason to change.
हम तरीकों को क्यों बदले? कोई वजह भी नहीं है तरीके बदलने के।
And Jesus tells them, destroy the temple and in 3 days I will raise it up.
और यीशु उनसे कहता है कि इस मंदिर को ढाह दो और इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
I had read this passage few many times, but I could not understand this particular part.
और मैं ये अध्याय को मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन ये भाग मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
But this time I worked on it and that's what I just want to share.
और इस बार मैंने मेहनत की और इसे समझने के लिए, और वही मैं आपसे बांटना चाहता हूँ।
Jesus responded with a very difficult answer to them.
और यीशु ने एक बहुत मुश्किल उत्तर के साथ में उन्हें प्रतिक्रिया दी।
He says that if the temple is destroyed, he will raise it up in 3 days.
और वो कहता है यदि मंदिर का विनाश भी हो जाए तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
And John explains this very thing in the passage.
और यूहन्ना समझाता है अध्याय में।
Yeah, what it means when Jesus says, "I will raise it up in 3 days."
कि जब यीशु कह रहा है कि मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो उसका अर्थ क्या है?
Yeah, John tells us that Jesus is not only talking about this temple that is made of bricks and stones.
और यूहन्ना समझाता है कि यीशु यह मंदिर के बारे में ही नहीं कह रहा जो पत्थरों और ईंटों से बनाया गया है।
Jesus is talking about his own body.
लेकिन यीशु अपने खुद की देह के बारे में कह रहा है।
He is talking about the fact that people will destroy his body and he will raise it up again in 3 days.
और वो ये कह रहा है कि लोग उसके शरीर का विनाश करेंगे और उसे वो 3 दिन में फिर से पूर्ण स्थापित करने वाला है।
At the beginning of Jesus' ministry, this is John chapter 2 and chronologically, Jesus is in a way declaring His death and his resurrection.
और यीशु एक तरीके से घोषणा कर रहा है अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में।
Jesus knows with what purpose he has come on earth.
और यीशु जानता है कि कौन सी वजह से के कारण वह पृथ्वी पर आया
है। And he is predicting his own death and resurrection.
और वो अपने खुद की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में घोषणा कर रहा है।
In the coming 3 years, this would happen. He was very sure.
और आने वाले 3 सालों में ये होना था उसके साथ, ये बात उसे पक्की मालूम थी।
From the beginning, Jesus knew what he is going to face.
और शुरुआत से ही यीशु जानता था कि किन बातों का वो सामना करने वाला है।
But Jesus, the chaos that Jesus created by coming into the temple.
लेकिन जो बातें यीशु ने वहाँ पर मंदिर आकर की।
It's not just about the temple that is made up of bricks and stones.
वो सिर्फ मंदिर को ही लेकर नहीं है जो मंदिर ईंट और पत्थरों से बनाया है।
There is a deeper meaning to what Jesus does.
लेकिन जो यीशु ने काम किया वहाँ मंदिर में आकर, उसका एक गहरा अर्थ है।
Yeah, as he drives out these money changers and sheep and cattle out of the temple.
और जैसे वो ये पैसे लेन देन करने वालों और वहाँ से जानवरों को वहाँ से बाहर निकालता है।
They had taken God's house and turned it into a market.
उन्होंने परमेश्वर के घर को एक व्यापार की जगह बना दी थी।
They had turned a holy place into a market.
एक पवित्र स्थान को उन्होंने व्यापार का घर बना दिया था।
Jesus says, "In 3 days I will raise it up."
और यीशु कहता है कि 3 दिन में मैं इसे खड़ा करूंगा।
Remember what he says in John 10 verse 17 and 18.
और याद करो कि क्या वह कहता है यूहन्ना के 10वें अध्याय वचन 17 और 18 में।
Now Jesus is bringing a clarity.
और यीशु यहाँ पर एक स्पष्टता लेकर आ रहे हैं।
What is the true temple?
कि सच्चा मंदिर क्या है?
I lay down my life that I may take it up again.
पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ।
No one takes it from me, but I lay it down on my own accord.
कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे अपने आप ही देता हूँ।
I have authority to lay it down and I have authority to take it up again.
मुझे उसके देने का भी अधिकार है और मुझे फिर से लेने का भी अधिकार है।
Jesus lays it down for our sin.
और यीशु उसे देता है हमारे पापों के कारण।
He makes a way to the cross.
और वो जगह बनाता है, रास्ता बनाता है क्रूस
for के your लिए, sin and my sin.
आपके और मेरे पापों के
for
कारण।
For the sin of this whole world.
और पूरे संसार के पापों के कारण।
When the Jews put all the charges against him.
और जब यहूदियों ने वो दोष उस पर लगाए,
they took him captive,
और उसे बंदी गृह में रख कर दिया,
and finally they killed Jesus on the cross,
और उसे बंदी बनाकर अंत में उन्होंने यीशु को क्रूस पर मार दिया,
but Jesus takes his life again,
लेकिन यीशु अपना जीवन दोबारा लेता है,
when they destroyed it, he builds it up again in 3 days.
उन्होंने उसका विनाश किया तो उसे वो 3 दिन में फिर से बनाता है.
When Jesus died on the cross, he was buried and he rose up again from the grave.
जब यीशु क्रूस पर मरा, उसे गाड़ा गया और वो फिर से जीवित हुआ.
And he is the perfect temple.
और वो ही वो सिद्ध मंदिर है.
Now there is no more temple that is made of bricks and stone required.
और अभी कोई जरूरत नहीं ऐसे मंदिर की जो ईंटों और पत्थरों से
that
बनाया
is finished
गया
and
है.
Done with.
और वो अब खत्म हो चुका
that
है.
That is destroyed.
उसका विनाश हो चुका है.
And today the temple doesn't exist, which was in Jerusalem.
वो मंदिर जो यरूशलेम में था वो है ही नहीं.
Maybe some rubbles are still there.
शायद उसके कुछ भाग अभी वहाँ पड़े होंगे.
And after resurrection, Jesus is that final temple.
और पुनरुत्थान के बाद यीशु वह अंतिम मंदिर है.
That whole mankind can look to him and worship him.
कि पूरी मनुष्य जाति उसकी ओर देख सकती है और उसकी आराधना कर सकती है.
A new place where everyone can come and meet with God and fellowship with God through Jesus and Jesus alone.
और एक नई जगह जहां हर कोई परमेश्वर से आकर मुलाकात कर सकता है और संगति कर सकता है.
Remember Jesus says in Matthew 12 verse 6.
और याद है यीशु मत्ती की किताब में कहता है,
I tell you something.
मैं आपको कुछ बताऊं.
Greater than the temple is here. He was talking about the temple that he was directing, the made of stone and bricks.
कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है.
I tell you something. Greater than the temple is here.
मैं आपको कुछ कहता हूँ. मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है.
He was talking about himself. He is that precious temple for us.
और वो अपने आप के बारे में कह रहा था, वह मूल्यवान मंदिर है हमारे लिए.
And we will worship to that temple all through our eternity.
और हम अनंत काल तक उस मंदिर की आराधना करेंगे.
Yeah, in John 4 we hear when Jesus comes to the well and he talks to the woman, he says to her, John 4 verse 21 to 23.
योहन्ना के 4th अध्याय वचन 21 से 23 तक.
Woman, believe me. The hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. The hour is coming and is now here when the true worship will worship the Father in spirit and in truth.
और वहां पर लिखा है, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और तुम जिसे जानते हो उसकी आराधना नहीं करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चा भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता उस अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहे हैं.
In other words, true worship will not be attached to Jerusalem or any other place in that way.
उसका अर्थ ये है कि सच्ची आराधना यरूशलेम या ऐसी कोई जगह से स्थिर नहीं है.
It will be in the spirit and in truth.
लेकिन वो आत्मा और सच्चाई में है.
And it is attached to Jesus and Jesus alone.
और वो यीशु और सिर्फ यीशु से जुड़ी हुई है.
Jesus says, "I am that new temple."
और यीशु कहता है कि मैं वो नया मंदिर हूँ.
When I raise my body from the dead.
और जब मैं मरे हुए से अपने शरीर को जीवित करूंगा,
Everywhere people may come to God through me and me alone.
और हर जगह लोग मेरे और केवल मेरे द्वारा आएंगे.
There is no need of going to pilgrimage anywhere else.
और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है.
There will be only one movement of the heart.
और बस एक हृदय का क्षण होगा.
From everything else to Christ and Christ alone.
और किसी भी और बात से केवल यीशु और यीशु की ओर.
Wasn't it wonderful to worship Jesus this morning?
क्या वो अद्भुत नहीं था यीशु की आराधना कर रहा है
He is our true temple. He is our true worship.
वो हमारा सच्चा मंदिर है और हमारी सच्ची आराधना है
Yeah, let's not get diverted. Let's just come to worship and worship Him alone.
हमारे ध्यान को हम भटकाए नहीं, लेकिन केवल यीशु और यीशु की आराधना करें.
He is the heart of our, He is the matter of our heart.
और वो हमारे हृदय का क्षण है.
He is one and only true God.
और वो ही केवल एक सच्चा परमेश्वर है.
If you are new here, if you are here for the first time, and if you have not heard about this Jesus,
अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने यीशु के बारे में पहले नहीं सुना है,
and if you want to know this temple. Jesus.
और अगर ये मंदिर यीशु को आप जानना चाहते हैं,
Come and meet with one of us.
तो हमें से एक से आके आप मिले.
And we will explain you.
और हम आपको समझाएंगे.
Yeah, isn't it? Aren't we who worship Jesus are glad that we have found Jesus?
और क्या ये सच नहीं है कि हमने जिन्होंने यीशु को पाया है,
yeah, that he is the ultimate. He is the ultimate God. He is the way, the truth, and life.
क्योंकि वही परमेश्वर है, वही मार्ग, जीवन और सच्चाई.
Whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life.
और जो कोई इस पर भरोसा करेगा, उसका विनाश नहीं होगा, लेकिन वो अनंत जीवन पाएगा.
So let's continue to worship Him.
तो आइए हम उसकी आराधना करते रहे.
Hallelujah.
Hallelujah.
God bless you. Yeah. Can we just rise and can we just rise up?
क्या हम खड़े हो सकते हैं?
As I shared in the first point,
जैसे मैंने पहले मुद्दे में बताया,
the true offering,
सच्चा भेंट,
true offering comes from our heart,
और वो हमारे हृदय से आता है.
And anything that is distracting us, anything that is taking away our true worship from God, let's repent and let's ask God, God, Lord Jesus, your presence is here today.
और कोई भी बात जो सच्ची आराधना से हमें दूर ले जाती है, उसके कारण हम पश्चाताप करें और कहें, प्रभु आपकी उपस्थिति हमें चाहिए.
And I want to worship you. I want to worship you whether I am alone, whether I am with people, whether I am in the meeting, whether I am in the church.
और मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, चाहे मैं अकेला हूँ, लोगों के बीच में हूँ, कोई सभा में हूँ या कलीसिया में हूँ.
And you worship him and he will honor you.
और आप उसकी आराधना करो और वो आपका आदर करेगा.
He says, when you do things in secret with me, when you spend time in secret with me, I will give you reward.
और जब वो कहता है कि जब आप गुप्त में मेरे साथ समय बिताएंगे, तब मैं आपको पुरस्कार दूंगा.
And he says, when two or three gather together, there I am.
और वो ये भी कहता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ हूँ.
We experienced his presence this morning. We saw healing and deliverance.
और हमने उसकी उपस्थिति का अनुभव किया इस सुबह. हमने देखा चंगाई और छुटकारा.
Let's ask from him. Father God, we just ask you, Lord.
आइए हम उससे मांगे.
Let's lift our voice and ask
that. आइए आवाज उठाकर हम उससे मांगे.
Yeah, we will worship him day in day out.
हम दिन रात उसकी आराधना करेंगे.
He is the only God and
वो ही एक परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर है.
As it says in Matthew 6.
और जैसे मत्ती 6 में लिखा है,
Seek first the kingdom of God.
ये पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो.
And his righteousness.
और उसकी धार्मिकता.
Our business is to seek Jesus's righteousness and Jesus's glory.
और हमारा काम है कि हम यीशु की धार्मिकता और महिमा की खोज करें.
Let's pray. Let's pray. Let's
आइए हम
God.
प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं.
Help us, Lord. Help us, Lord. Lord, we thank you for this morning. Thank you, Lord.
सुबह के लिए धन्यवाद.
Thank you for your mighty presence.
धन्यवाद आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए.
Thank you for speaking to us.
धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए.
Help us that in any place wherever we are.
प्रभु हमारी मदद करो जो भी स्थान में है.
Whether we are in difficulty, whether we are in a joyous place.
चाहे हम मुश्किल में हो या आनंद की जगह पर हो,
We will not turn away from you.
प्रभु हम आपसे मुंह नहीं मोड़ेंगे.
We will continue to worship you.
हम आपकी आराधना करते
रहेंगे. We will continue to look at you.
हम आपकी ओर देखते रहेंगे.
Bless us.
हमें आशीषित
करो. Give us grace upon grace.
हमें अनुग्रह और अनुग्रह देते रहो.
We ask this in the mighty name of Jesus.
हम यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में मांगते हैं.
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
परमेश्वर आपको आशीषित करे.
Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद.